सब की एक कॉमन चीज़ नोट कर लें कि ये तमाम अल्फाज इस्म के शुरू में आते हैं, ठीक है। इनके मुश्किल नाम भी हैं जो अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी आप डीप में ग्रामर में चलेंगे तो इनके लिए कुछ और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते हैं। तो पहली बात क्या है कि ये इस्म के शुरू में आते हैं, इसके बाद इस्म आता है या इस्म के शुरू में आते हैं। देखिए सबसे पहले है लअल्ला, ये लफ्ज़ अगर जुमले के शुरू में हो तो इसका तर्जमा शायद यानी परहैप्स इंग्लिश में अगर आप कहते हैं मे बी शायद करते हैं, और अगर जुमले के दरमियान में हो तो तर्जमा उमूमन ताके किया जाता है। क्या बात हुई कि लअल्ला जब जुमले के शुरू में हो तो शायद के मानों में मे बी इट विल हैपन, मे बी इट विल नॉट, इस तरह से, लेकिन जब ये जुमले के दरमियान में हो तो ताके, जैसे हम कहते हैं ना ये मैंने इसलिए किया ताके ये हो, ठीक है। तो यही चीज़ इधर दिखती है, मिसालें देखेंगे। सबसे पहली मिसाल है सूरत कहफ की आयत नंबर 6, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, पर शायद आप अपने आप को हलाकत में डालने वाले हैं इनके पीछे इस अफसोस में कि ये इस बात पर ईमान नहीं लाते। देखिए कितना खूबसूरत जुमला है, यहाँ अल्लाह के नबी की हालत को बयान किया गया कि जो लोगों को खैर देने और उनको हिदायत की तरफ बुलाने की आपके दिल में तड़प थी, कैसा लगता था कि आप इस गम के मारे अपने आप को हलाक कर लेंगे। तो लअल्ला का लफ्ज़ यहाँ के शायद के यानी उम्मीद की जाती है, ये बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत भरा अंदाज़ है जैसे माँ अपने उस बच्चे या बच्ची को जो रातों को जाग जाग के पढ़ती है तो कहती है कि बेटा तुम तो लगता है अपने आप को हलाक कर लोगी, इतना जागती हो, इतना पढ़ती हो, ये होगा वो होगा। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, ये इंसान के दिल के अंदर एक किस्म का एहसास पैदा करने के लिए होती हैं कि आप इस पर इतना गम ना खाएं। और इसमें असल में तो नबी सल्लम की तारीफ़ की गई है ना कि आप कोई बेहिस इंसान नहीं थे, बल्कि आप हकीकत में एक बहुत ज़्यादा हसास इंसान थे, बुराई और गंदगी को देखते और परख जाते और उसका फ़र्क जानते। देखिए कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि ख़राबी किधर है, बहुत काबिल रहम लोग होते हैं, कुछ है उनको पता है करते नहीं सुस्ती की वजह से, लेकिन जिनको पता ही नहीं वो करेंगे कब, कभी भी नहीं करेंगे ना। तो अल्लाह से वो शऊर मांगना चाहिए कि जो हमें हमारी अपनी और दूसरों की बुराइयाँ दिखाए। बहरहाल यहाँ लअल्ला का मानी क्या आया, शायद, क्योंकि ये लफ्ज़ बोलिए जुमला पूरा करें जुमले के शुरू में आया, तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जब कोई जुमले के शुरू में आए तो शायद के मानों में आता है। अब दूसरे मानों में देख लेते हैं, आयत 45 है सूरत अल-अनफाल की, 45 नंबर आयत सूरत अल-अनफाल, वस्कुरुल्लाहा कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ ताके के माने ना, अगर आप ये कहें कि हमने तो लअल्ला का मानी शायद पढ़ा था तो ताके अब क्या हुआ, तो तुम अल्लाह का जिक्र करो शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, तो बात नहीं बनती ना। ताके यानी सेंस बदल जाती है जुमले के किसी भी लफ्ज़ के शुरू या उसके आखिर में होने से। तीसरी मिसाल है सूरत अल-लाक की आयत नंबर 1, लअल्लल्लाहा युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, शायद अल्लाह इसके बाद कोई सुलह की सूरत निकाल दे। तल्लाक के मौजू में यह आयत गुजरी आती है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लअल्ला शायद है। सब मिल के दोहराइए, लअल्ला के कॉम थिंग्स हैं, नंबर 1 इस्म के साथ इस्म के शुरू में आता है, नंबर 2 आराम से सुकून से सुकून से, अगर जुमले के शुरू में हो शायद, और अगर जुमले के बीच में हो तो ताके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको एकदम आपने जब पढ़ना है ना, अगला जो लफ्ज़ मैं बोलने लगी हूँ, जब आपसे कहा जाएगा ना अच्छा ज़रा सुनाइए, तो आप इसको काना पढ़ देंगे, हालांकि देखिए ये लफ्ज़ के का अन्ना, इसलिए चाहती हूँ कि बारीक नज़र पैदा करें, यानी बारीक भी नहीं क्या होती है कि इंसान को गलतियों से बचाती है। बाज़ लोग इसको जल्दी में काना कह देते हैं, हालांकि पीछे हम काना के पढ़ चुके हैं। ये क्या है, का अन्ना, क्या है ये असल में लफ्ज़, का प्लस अन्ना, का क्या होता है हरफे तशबी, अन्ना और इन्ना, इन्ना क्या, जब इन्ना जुमले के जी शुरू में आता है तो अन्ना बन जाता है, ठीक है। तो ये वही लफ्ज़ है, ये अलामत तशबीह के लिए इस्तेमाल होती है, इसका तर्जमा गोया के या फिर जैसे किया जाता है, यानी गोया कैसा होगा या जैसे। और कभी इसके नून पर जज़्म भी आ जाती है, क्या होगा फिर? का अन, ठीक है। मसलन इसकी मिसाल देखिएगा, पहली मिसाल है सूरत अलहाका की आयत नंबर 7, का अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, गोया के वो खोखली खजूरों के तने हैं। किसके लिए आया भला जी? किसी को हाथ खड़ा करें, किसकी बात है इधर? कोई भी जी। कौम आद के लिए कि जब उन पे अज़ाब आया, हवाओं ने उनको पटख पटख के फेंका, तो उनके सर जिस्म से अलग हुए, तो उनके लंबे कद ऐसे लग रहे थे कि जैसे खजूर के गिरे हुए तने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सूरत अर्रहमान आयत 58 का अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया के वो हूरें याकूत और मोती की बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे का अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया के वो हूरें याकूत और मोती की बनी हुई हैं। तो यहाँ बात बिल्कुल वाज़ेह है कि गोया के का मुराद ऐसे है जैसे आप किसी चीज़ को कहते हैं कि ये ग्लास गोया के ये मतलब क्रिस्टल का है, यानी इतना खूबसूरत है कि ऐसे लग रहा है ये क्रिस्टल है, ये चीज़ शीशा इतना चमक रहा है ऐसे लगता है कि ये चांदी है। जैसे हम अपना माफियो ज़मीर बयान करते हैं ना, गोया कैसा है, तो यानी इसमें थोड़ा सा तशबीह भी आ जाती है और किसी चीज़ का हुसन बयान करना भी आ जाता है। फिर तीसरी मिसाल देखते हैं इसकी, सूरत नाज़ियात की आयत नंबर 46 का अन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, गोया के वो उस दिन उसे देखेंगे और कहेंगे कि वो दुनिया में नहीं ठहरे मगर एक शाम या उसकी सुबह। दुनिया से जाने के बाद ये पूरी ज़िंदगी, ये दुनिया इंसान को एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा दिखेगी, जिसके लिए आज हम हलकान हो रहे हैं, जिसके लिए आज हम दुखी हैं और जिसके ख्वाब हमें अल्लाह के रास्ते के कई प्लान से दूर कर देते हैं कि अभी तो हमारी अपनी दुनिया के बहुत सारे ख्वाब हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वहाँ जाओगे तो ऐसे लगेगा कि एक घड़ी रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगली मिसाल देखते हैं सूरत नाज़ियात आयत 46 आयत सूरत नाज़ियात नहीं, अगली सूरत अलराफ आयत 92 है। अगली मिसाल देखिएगा, कालम यगनऊ फीहा, गोया के वो उसमें बसे ही न थे। ठीक है, ये क्या मतलब हो गया? कान जज़्म के साथ आ गया, नून की ज़बर ख़त्म हो गई तो कान हो गया। और असल में ये क्यों हुआ, अगर आप देखें तो अगले लफ्ज़ पे तशदीद आ रही है, दो तशदीदें आपस में नहीं मिल सकती ना, मुश्किल होता है पढ़ने के लिए, तो लिहाजा यहाँ ये बात आ गई कि गोया के नहीं थे वो बसे उसमें। उसके बाद आगे देखते हैं आयत नंबर 7 है सूरत लुकमान की, कालम यस्माहा का अन्ना फ़ी उज़ुनैही ही वक़रा, यहाँ देखिए ये खूबसूरत मिसाल है, इसको आप बल्कि याद करें कि इसमें कान भी आ गया और कान्ना भी आ गया, गोया कि उसके कानों ने सुना ही नहीं जैसे उसके कानों में बोझ है। इसमें आप देखिए गोया के और जैसे दोनों का फ़र्क आपको पता चल रहा है। ऑपोजिट करके देखें, जैसे उसने सुना ही नहीं गोया के उसके कानों में बोझ है, मानी समझ आ जाता है, 100% गलत नहीं होती बात, लेकिन वही बात के जो एक अच्छी उर्दू बोलने वाले के जुमले और एक नए नए शख्स के जो उर्दू बोलता है या जिसको उर्दू नहीं आती उसकी ज़ुबान का जो फ़र्क है। तो अरबी ज़ुबान चूँकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना माफी ज़मीर पेश करती है, तो लिहाजा ये छोटी छोटी अलामतें मानी के फ़र्क को सामने रखती हैं। वाज़े कान्ना को दोहराइए, पहली बात अलामतें सब एक टोन में बोला करें ताकि बाद में जब आपको सुनाऊँ अभी आपकी जो बोलते हैं, यकीन करें आपको शर्म आएगी। अभी अब ये फाइल ख़त्म होती है ना तो आप यही सब ले कीजिएगा जब ये लोग बोलते हैं। ठीक है, एक टोन में बोले, एक तरह सब बात करें, आपको लगे ना मेरी आवाज़ दूसरों से ऊँची है तो हल्के हो जाए, और आपको लग रहा है मेरी आवाज़ तो दब गई है तो थोड़ा ऊँचा हो जाए। आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप जल्दी चाह रहे हैं मैं बता दूँ तो दूसरों के साथ दूसरों को पीछे छोड़ें। सुकून ठहराओ इख्तियार करें अपनी ज़ात में, फिर इससे इंशाल्लाह आपके अंदर एक जो सुकून है ना वो दूसरों को भी महसूस होगा। अब बोले सब, कान्ना की पहली बात जी शाबाश, पहले से बेहतर बोले आप लोग, तशबीह के लिए है, दूसरी बात गोया के जैसे के लिए, फिर चौथी बात کبھی کبھی نون کے جزم پر بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, چلے آگے دیکھتے ہیں. تیسرا لفظ کیا ہے؟ لئیتا. بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن لفظ سنتے دل میں سے حسرت سی آتی ہے, لئیتا. یہ لفظ عموماً اظہار افسوس کے لیے. آپ صرف اگر لفظ اظہار افسوس کوڈ ورڈ رکھ لینا, جیسے کا کا کوڈ ورڈ کیا تھا؟ تشبیہ. لا اللہ کا کوڈ ورڈ تھا شاید, اس میں شاید ہے, یقین نہیں ہے. کانا میں یہاں کے گویا کے کی کیفیت ہے. پھر لئیتا جو ہے اس میں اظہار افسوس ہے. یہ لفظ عموماً اظہار افسوس کے لیے یا ایسی آرزو کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو, اور ہماری تو زیادہ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو پوری کوئی نہیں ہونی. لئیتا میں حسرت بھی ہے, تمنا بھی ہے, لیکن وہ تمنا جو پوری نہیں ہونی. مثلا اگر آپ کہیں کہ میں پھر 20 سال کی جوان لڑکی بن جاؤں, تو آپ میں سے بہت ساروں کی یہ خواہش نہیں پوری ہوگی نا. ہم میں سے کوئی کہہ دے کہ کاش میں لڑکا بن جاؤں, میں مرد بن جاؤں, نہیں بن سکتے نا. تو ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکے, تو اس لیے پھر اس کا ترجمہ کاش کے آ جاتا ہے, کاش کے ایسا ہوتا. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی؟ کاش کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اور قرآن مجید میں عموماً اس کے شروع میں یا استعمال ہوتا ہے, یا, یعنی جیسے یا لئیتا نہیں, ابھی ہم دیکھیں گے, یا لئیتا, جس کے ساتھ ترجمہ اے کاش. یا کیا ترجمہ ہوتا ہے عام طور پہ؟ دیکھیں, یا ایھا الانسان, یا ایھا المدثر, ہاں, یا ایھا الذین آمنوا. تو یا میں اے, اے, یہ میرے سامنے جیسے خطاب کا صیغہ نا, ہم ایک دوسرے کو ایڈریس کرتے ہیں, تو یا کا لفظ اس سے پہلے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یا لئیتا نہیں, یا لئیتا کا لفظ آ جاتا ہے, اے کاش کیا جاتا ہے. اب آپ کو دیکھیے آج یہ کتنی باریک بات پتہ چلی ہے نا. قرآن پاک میں یا لئیتا نہیں کا لفظ آپ نے یاد کیا ہوا ترجمے میں, لیکن آپ کو یہاں اب یا کا معنی پتہ چل رہا ہے کہ اے کیوں ہے یا. اس لیے لفظوں کے ساتھ جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سے بہت باریک چیزیں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے, اگر لئیتا کے آخر میں علامت یا لگانے کی ضرورت ہو تو اس کے اور یا کے درمیان نون کا اضافہ کرتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ جملہ دیکھیے کہ لئیتا کے آخر میں علامت لگائیں یا, مثلا لئیتئی بن جائے گا نا, تو پھر یا کے بیچ میں نون لگا دیتے ہیں, لئیتنی. نون کیوں لگایا؟ پڑھنے کے لیے سہولت ہو, اور یہ نون بہت جگہ مدد کرتا ہے. آپ نے پیچھے گرامر میں بھی, تجوید میں بھی پڑھا ہے, نون قطنی ہے. جہاں کوئی لفظ بولا نہیں جاتا تو اکثر ادھر وہاں جا کے نون لگا دیا جاتا ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سورۃ فرقان آیت 27-27, وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا, اے کاش کہ میں رسول کا راستہ اپناتا. سورۃ فرقان کی آیت ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے. یہ کب کہے گا؟ کون کہے گا؟ بری دوستیوں پہ. ایک شخص نے اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک دیا تھا, نعوذ باللہ, اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہاں دیکھیے, یا لئیتنی. اب اس کو ذرا کھول کے دیکھیں تو یہ لفظ کیا ہے؟ نمبر ایک یا, پھر لئیتا, پھر پڑھنے کے لیے نون بیچ میں لگایا گیا اور چھوٹی یا لگا دی گئی. اصل لفظ تھا لئیتا, پہلے لگ گیا یا, بعد میں لگنا تھا یا, تو یا کے بیچ میں لگ گئی نون. کتنوں کو بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے, یا لئیتنی, اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا. اسی طرح سورۃ نبا کی آیت 40-40, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا, اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہاں بھی دیکھ لیجئے, یا لئیتنی, بالکل وہی لفظ ہے, یہ واحد ہے نا. چھوٹی یا کس کے لیے ہوتی ہے؟ میرے لیے ہوتی ہے, اپنے لیے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے گا آیت نمبر, ہم دیکھیں گے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66-66, یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اس دن جب کہ ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے, اے کاش کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے. فرق کیا ہے اس میں اور پچھلوں میں؟ وہاں یا لئیتنی ایک کے لیے تھا, خطاب کا صیغہ تھا, واحد متکلم کا صیغہ تھا, خطاب کا نہیں, واحد متکلم کا تھا. یہاں جمع متکلم ہے, ہم سب, ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. ठीक है, चलिए दोहराइए। लयिता के लिए नंबर एक, लयिता इजहारे अफसोस के लिए। नंबर दो, ऐसी आरजू जो पूरी ना हो सके। तीसरी बात, या लगा दिया जाता है और फिर उसमें या का तर्जमा ए के मानों में आ जाता है। चौथी बात, लयिता के बाद या लगाना हो तो बीच में नून लगाते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी लफ्ज देखते हैं, लाकिन्ना। लाकिन्ना उर्दू में एक लफ्ज होता है लेकिन, बस ये लेकिन ही है असल में, आप देख ले तो फ़र्क है थोड़ा सा इसका बोलने में प्रोनाउंसिएशन का, अदरवाइज इसका तर्जमा वगैरह सब कुछ वही है। लाकिन्ना ये लफ्ज गुजरी हुई बात की वजाहत के लिए आता है। ऐसे ही ना, आपको मैं कोई बात कहूँ तो आप कहें लेकिन ये बात नहीं थी, मैं इसलिए नहीं थी, मैं तो बैठी थी, अभी तो मैंने सबक शुरू नहीं किया था। तो हम अपनी वजाहत दे रहे होते हैं ना माजी के किसी काम की, बिल्कुल वही चीज़ इधर है। और कभी इसके नून पर जज़्म भी आ जाती है और इसका तर्जमा लेकिन किया जाता है। क्या बात हुई, गुजरी हुई बात की वजाहत, कभी कभी इसके नून पर जज़्म होगी तो फिर कैसे बोलेंगे इस लफ्ज़ को, सब बोलिए लाकिन। लाकिन ठीक है, तर्जमा इसका लेकिन होता है। मसलन सूरत अलहज की आयत नंबर दो है, व तरन नास सुकारा व मा हुम बि सुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। और आप देखेंगे लोगों को जैसे कि वो नशे में हो, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, और लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। ठीक है, तो यहाँ लाकिन में लेकिन का मानी है। फिर इसी तरह सूरत अल-बकरा आयत 57, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया और लेकिन वो अपने आप पर जुल्म करते थे। ठीक है, आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं लग रहा इसमें। फिर इसके बाद सूरत आल इमरान आयत 117 है, वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून। और अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया और लेकिन वो अपने आप पर खुद जुल्म करते थे। ठीक है, तो लाकिन यहाँ आ गया लेकिन में। बात वाज़ है, दोहराइए ज़रा लाकिन्ना की बातें। नंबर एक, गुजरी हुई बात, कभी नून पर जज़्म भी आती है, तर्जमा हमेशा लेकिन होता है। ठीक है, चलिए इसको अब आपने किस तरह से करना है, आपको इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं मिलेंगी, इसलिए आप इन चारों की दो दो मिसालें ढूंढ के लाएंगे और इंशाल्लाह अगली क्लास से पहले आप उसको करेंगे एक दूसरे से शेयर, फिर आगे हम चलेंगे। कोई सवाल, कोई बात इसके बारे में नहीं, चलिए ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।